एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सालांच एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे शख्स की पड़ताल कर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही शायद रोमांच, प्रलोभन, अनगिनत प्रेम प्रसंग ऐसी तस्वीरें जहन में आती हैं।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन जाकोमो कासानोवा की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, हम उनकी 12 खंडों की विशाल आत्मकथा हिस्टवार दमावी, मेरे जीवन की कहानी के जरिए उनके जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे आज।
जी,
ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि अपने जीवन को मतलब एक कला की तरह गढ़ने की कहानी है।
बिल्कुल सही कहा। जाकोमो गिरोलामो कासानोवा 1725 से 1798 तक वेनिस गणराज्य के नागरिक थे और वो, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक प्रलोभक या लिबर्टीन मतलब स्वच्छंद व्यक्ति ही नहीं थे।
हाँ,
वो एक साहसी थे, लेखक, राजनायक, जासूस, यहाँ तक के थोड़े जादूगर, सैनिक, पादरी और वायलिन वादक भी। उनकी आत्मकथा सिर्फ उनके कारनामों का लेखा जोखा नहीं है बल्कि ये 18वीं सदी के यूरोप का एक बहुत ही दुर्लभ और कह सकते हैं जीवंत जमीनी दस्तावेज है।
अच्छा,
मतलब उस जमाने का आईना।
हाँ, उस दौर के समाज, राजनीति, विचारों सब का आईना है।
और शायद यही बात इसे आज भी इतनी प्रासंगिक बनाती है।
ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है बल्कि पहचान, स्वतंत्रता, भाग्य और वो जो सामाजिक बंधन होते हैं उनके बीच अपनी खुशी को विकसित करने की एक लगातार चलने वाली एक दार्शनिक खोज भी है। कैसे एक साधारण अभिनेता का बेटा अपनी बुद्धि, अपने आकर्षण और हाँ दुस्साहस के दम पर यूरोप के इतिहास की सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक बन गया।
यही सवाल है।
तो चलिए उनके सफर की शुरुआत से ही पड़ताल करते हैं। उनके शुरुआती साल कैसे थे?
देखिए, उनका जन्म हुआ 1725 में वेनिस में। अब वेनिस उस जमाने में वो शहर अपने नकाबों, साजिशों और कार्निवल की आजादी के लिए मशहूर था।
हाँ, मैंने सुना है एक अलग ही माहौल था वहां का।
बिल्कुल, एक ऐसा माहौल जहां पहचान बड़ी तरल सी चीज थी, जहां हर कोई जैसे कोई ना कोई भूमिका निभा रहा हो। उनके माता पिता अभिनेता थे तो समाज के हाशिए पर थे, लेकिन वो जो प्रदर्शन और बदलाव की दुनिया है वो उनकी रगों में थी।
और पारिवारिक स्थिति, क्या माता पिता का साथ रहा?
पिता की मृत्यु तो जल्दी हो गई जब वो सिर्फ 8 साल के थे, और माँ जनेटा फारूची वो अभिनेत्री थी तो अक्सर दौरे पर ही रहती थी।
ओह,
तो उनका पालन पोषण ज्यादातर उनकी दादी मार्जिया बाल्डेसेरा ने किया। उन्होंने स्थिरता दी, थोड़ी व्यावहारिक समझ दी, लेकिन वो जो शुरुआती वेनिस का माहौल था ना, उसने उन्हें सिखा दिया कि दुनिया एक मंच है और आप अपनी भूमिका चुन सकते हैं।
और वो बचपन की एक कहानी भी है ना, नाक से खून बहने की बीमारी और फिर किसी लोक चिकित्सक का अनुभव।
हाँ हाँ, वो किस्सा वो अक्सर सुनाते थे। वो कहते थे कि उसी अनुभव ने उनकी बुद्धि को जगाया, उन्हें प्रस्तुति और विश्वास की शक्ति का एहसास कराया। अब ये कितना सच है कितना कहानी, ये कहना मुश्किल है।
वो तो कहानी कहने में माहिर थे ही।
बिल्कुल, लेकिन उनकी बुद्धि तो कमाल की थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें पाडुआ भेजा गया था चर्च में करियर बनाने के लिए। उस जमाने में मतलब कम जन्म वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिए ऊपर उठने का एक रास्ता था ये।
अच्छा,
वहां उन्होंने कानून, धर्मशास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र सब कुछ पढ़ा, पर ज्ञान की प्यास जितनी थी उतनी ही कह सकते हैं दुनियावी अनुभवों की भूख भी थी। वो जो विद्वान और कामुक व्यक्ति का द्वंद्व है वो उनके जीवन भर साथ चला।
सिर्फ 17 साल की उम्र में कानून में डॉक्टरेट और छोटे पादरी का पद भी, ही तो वाकई असाधारण प्रतिभा है।
जी हाँ,
लेकिन चर्च का जीवन उनके जैसे मिजाज के लिए शायद था ही नहीं। सेमिनरी से निकाल दिए गए।
बिल्कुल, घोटाले और अनुशासनहीनता के कारण। और उनका ये निष्कासन एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब उनके पास कोई संस्थागत सहारा नहीं बचा था सिवाय अपनी तेज बुद्धि और अपने आकर्षण के।
तो यहीं से वो दौर शुरू हुआ जिसे हम उदय और संघर्ष कह सकते हैं। अब उन्हें अपनी राह खुद बनानी थी।
हाँ बिल्कुल, और उन्होंने बनाई भी। भूमध्य सागर का दौरा किया, कोर्फ्यू और कॉन्स्टेंटिनोपल में सैनिक के तौर पर रहे, फिर वेनिस लौटे तो थिएटर ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाने लगे।
मतलब काफी अलग अलग चीजें आजमाई।
हाँ, और इसी दौरान वो जुआ खेलने, समाज में अपनी जगह बनाने और हाँ वो जो प्रलोभन की कला है उसमें भी माहिर हो रहे थे।
क्या ये सब सिर्फ गुजारे के लिए था या ये भी अपनी पहचान गढ़ने का एक तरीका था, जैसे अलग अलग किरदार निभाना?
मेरे ख्याल से दोनों ही बातें थीं। वो जाहिर है जीने के लिए साधन तो जुटा ही रहे थे, लेकिन साथ ही वो अलग अलग भूमिकाएं आजमा रहे थे, सीख रहे थे कि दुनिया चलती कैसे है, लोगों पर असर कैसे डाला जाए। और तभी उनकी मुलाकात हुई वेनिस के एक अमीर सीनेटर माटियो ब्रागडिन से।
हाँ, ब्रागडिन, ये किस्सा तो मशहूर है। कासानोवा ने उनकी जान बचाई थी, है ना? कुछ डॉक्टरी ज्ञान और कुछ रहस्यमयी बातें मिलाकर।
हाँ, ऐसा ही कहा जाता है। सीनेटर को शायद स्ट्रोक हुआ था, कासानोवा ने देखभाल की और संयोग से वो ठीक हो गए। नतीजा ये हुआ कि कृतज्ञ सीनेटर ने उन्हें बेटे की तरह अपना लिया।
तो ये तो उनके लिए समझिए जैकपॉट लग गया। पैसा, रुतबा, सब मिल गया।
पैसा तो मिला ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी थी सामाजिक स्वीकृति और संसाधनों तक पहुंच। इसने उन्हें पहली बार एक सज्जन की तरह जीने की आजादी दी, बिना रोजी रोटी की फिक्र किए। और इसी नींव पर उन्होंने अपने यूरोपीय कारनामों का महल खड़ा किया। ब्रागडिन के पैसे और अपने बुद्धि के दम पर वो यूरोप की राजधानियों की तरफ निकल पड़े
और पैलेस उनका जैसे दूसरा घर बन गया। फ्रांसीसी भाषा पे जबरदस्त पकड़ बना ली, लुई 15 के दरबार तक पहुंच गए, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर ली, मंत्री, एबे डी बर्नीस, मैडम डी पोम्पडो।
हाँ, ये उनकी खूबी थी।
ये सब कैसे किया उन्होंने? कोई खास रणनीति थी?
रणनीति थी अनुकूलनशीलता और अवसर को पहचानना। वो जिस माहौल में जाते, वहां के रंग में ढल जाते, भाषा सीख लेते, और सबसे बड़ी बात, वो समझ जाते कि सत्ता किसके हाथ में है और उन लोगों को क्या चाहिए। वो सिर्फ दिलचस्प नहीं थे, वो उपयोगी भी थे। उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान,
जैसे वो गणित का ज्ञान,
हाँ, गणितीय ज्ञान, और उनके जो तरह तरह के अनुभव थे, वो उन्हें मूल्यवान बनाते थे।
और इसी का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है 1757 में फ्रांस की पहली सरकारी लॉटरी की शुरुआत।
ये तो कमाल का काम था।
बिल्कुल, उन्होंने सरकार को यकीन दिलाया कि ये योजना फायदेमंद है और वो जबरदस्त सफल रही। इससे कासानोवा को बहुत पैसा मिला और इज्जत भी बढ़ी। तो वो आलीशान जिंदगी जीने लगे। पेरिस के जो बौद्धिक सर्कल्स थे उनमें उठना बैठना, वोल्टेयर, रूसो जैसे बड़े नामों के साथ बहसें।
जी हाँ, वो सिर्फ एनलाइटनमेंट यानी ज्ञानोदय के बारे में पढ़ते नहीं थे, वो उन विचारों को जी रहे थे। तर्क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सब उनके जीवन का हिस्सा थे।
और उन्होंने फ्रांसीसी सरकार के लिए जासूसी भी की, गुप्त मिशनों पर भी गए।
हाँ, ये भी किया। तो देखा जाए तो 1750 से लेकर 1760 के दशक का जो मध्य था, वो उनकी ताकत और असर का शिखर था। सोचिए, एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर यूरोप के कुलीन समाज के बिल्कुल केंद्र तक पहुंच जाना।
लेकिन कहते हैं ना, जितनी तेजी से ऊपर गए उतनी ही तेजी से नीचे भी आए।
हाँ, वो सफलता टिक नहीं पाई। कुछ बुरे निवेश, जुए में बहुत पैसा हार गए, कुछ राजनीतिक गलतियां, इन सब ने उनके पैसे और असर को कमजोर कर दिया।
और उन पर वो चार्लेटन यानी धोखेबाज और लिबर्टन यानी अय्याश होने के इल्जाम भी लगने लगे।
हाँ, और कुछ हद तक ये बातें सही भी थीं, लेकिन ये उनकी पूरी शख्सियत नहीं थी। पर नतीजा ये हुआ कि उन्हें पेरिस से, वियना से, वारसो से, कई जगहों से निकाल दिया गया। वारसो वाला किस्सा तो एक पोलिश काउंट के साथ खतरनाक लड़ाई के बाद हुआ था।
इसके बाद तो फिर कई साल तक भटकते ही रहे। दुनिया भी बदल रही थी, शायद वो खुद को थोड़ा अप्रासंगिक भी महसूस करने लगे होंगे।
संभव है। 1774 में उन्हें वेनिस लौटने की इजाज़त मिली, माफ़ी मिल गई, लेकिन ये वापसी कुछ खास अच्छी नहीं रही। वो अब एक बदनाम, अधेड़ उम्र के आदमी थे। और विडंबना देखिए, गुजारे के लिए उन्हें उन्हीं राज्य जिज्ञासुओं के लिए मुखबिरी करनी पड़ी जिन्होंने कभी उन्हें जेल में डाला था।
ये तो बड़ी कड़वी बात है।
बहुत। और फिर आया 1783, जब उन्हें वेनिस से हमेशा के लिए निकाल दिया गया।
क्यों? इस बार क्या हुआ?
उन्होंने एक व्यंग्यात्मक कविता लिख दी थी जिसमें वेनिस के कुछ बड़े लोगों का मजाक उड़ाया था। बस फिर क्या था, उन्हें हमेशा के लिए वेनिस छोड़ना पड़ा। ये उनके घूमने फिरने वाले सक्रिय जीवन का लगभग अंत था।
तो उनका आखिरी पड़ाव कहाँ रहा?
उनका आखिरी अध्याय बीता बोहेमिया में, आज के चेक गणराज्य में, डक्स नाम के महल में। वहां वो काउंट वॉन वॉल्स्टीन के लाइब्रेरियन बन गए।
लाइब्रेरियन?
कासानोवा,
हाँ,
उनके लिए ये बड़ा अकेलापन, हताशा और शायद अपमान का समय था। लेकिन इसी अकेलेपन और उदासी में उन्होंने अपने जीवन का सबसे महान काम किया, अपनी आत्मकथा हिस्टोर दे मावी लिखनी शुरू की।
अच्छा, तो वहीं उन्होंने ये सब लिखा?
जी हाँ, ये जैसे अपने उस शानदार अतीत को फिर से जीने और अपनी कहानी को हमेशा के लिए जिंदा रखने का उनका तरीका था। 1798 में वहीं उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी ये कहानी उन्हें अमर कर गई।
इतना उतार चढ़ाव भरा जीवन, इसके पीछे का मूल दर्शन क्या था? कौन सी चीज थी जो कासानोवा को चलाती थी? क्या वो सिर्फ मजा और आनंद चाहते थे?
उनका अपना एक मशहूर कथन है, मेरे जीवन का मुख्य काम अपनी खुशी को विकसित करना रहा है। लेकिन इसे सिर्फ सुखवाद मतलब हेडनिज्म समझना शायद सही नहीं होगा।
क्यों?
क्योंकि ये उस दौर के ज्ञानोदय के विचारों से बहुत गहराई से जुड़ा था। तर्कसंगत आत्महित, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उनका मानना था कि दूसरों के आज़ादी का सम्मान करते हुए अपनी खुशी की तलाश करना एक अच्छा लक्ष्य है। उनका नज़रिया काफ़ी हद तक धर्मनिरपेक्ष था। वो भाग्य या ईश्वर को एक ऐसी ताकत मानते थे जिसे चतुराई से साधा जा सकता है, न कि कोई नैतिक पहरेदार।
और धर्म के बारे में क्या सोचते थे? पादरी बनने वाले थे एक जमाने में।
संगठित धर्म को लेकर वो काफी शक्की थे, अक्सर उसे सामाजिक नियंत्रण का एक जरिया मानते थे।
तो फिर उनकी प्रेरणाएं क्या थीं? सिर्फ कामेच्छा तो नहीं हो सकती जैसा कि आम धारणा है।
कामेच्छा एक हिस्सा जरूर थी, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी भूख कहीं ज्यादा बड़ी थी जीवन के हर अनुभव के लिए। पहली और शायद सबसे बड़ी प्रेरणा थी जिज्ञासा।
जिज्ञासा किस तरह की?
हर तरह की, असीम बौद्धिक और सामाजिक जिज्ञासा। वो सब कुछ जानना चाहते थे, जादू टोने से लेकर फाइनेंशियल थ्योरी तक। हर किसी से मिलना चाहते थे, राजाओं से लेकर वेश्याओं तक। महिलाओं के प्रति भी उनका आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो उनके दिमाग, उनके चरित्र, उनकी कहानियों में सच में रुचि लेते थे।
ये दिलचस्प है। और दूसरी प्रेरणा?
दूसरी प्रेरणा थी स्वनिर्माण की जबरदस्त इच्छा। देखिये, उनके पास जन्म से न कोई रुतबा था न पैसा, तो उनका पूरा जीवन खुद को गढ़ने, खुद को बनाने की एक कोशिश थी। वो अपनी बुद्धि और अपनी महत्वाकांक्षा के लायक एक पहचान बनाना चाहते थे।
अच्छा, और
तीसरी प्रेरणा थी बौद्धिक उत्तेजना की तलाश। वो बोरियत से सख्त नफरत करते थे। जुआ, फाइनेंशियल स्कीम्स, राजनीतिक साजिशें, यहां तक कि प्रलोभन भी, ये सब उनके लिए दिमागी जेल थे, चुनौतियां थीं। जीवन उनके लिए एक मंच था और वो सबसे दिलचस्प एक्टर बनना चाहते थे।
और इन सबके ऊपर स्वतंत्रता की चाह?
हाँ, सबसे ऊपर शायद स्वतंत्रता की चाह थी। किसी इंसान, किसी संस्था, किसी सामाजिक उम्मीद से बंधकर न रहने की जबरदस्त इच्छा। उनका लगातार भटकते रहना इसी का सबूत है।
मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका भी बड़ा अनोखा था। वो हार नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक पहेली की तरह देखते थे।
बिल्कुल, वो मुश्किलों को सजा नहीं बल्कि एक मौका मानते थे, हल करने के लिए एक पहेली, अपनी काबिलियत परखने का एक टेस्ट। चाहे वो बुद्धि हो, हाजिर जवाबी हो या हिम्मत, वो शायद ही कभी निराशा में डूबते थे।
अच्छा, जेल हो या दिवालियापन?
हाँ, उनका दिमाग फौरन हिसाब किताब लगाने लगता था, रणनीति बनाने लगता था, वापसी की योजना बनाने लगता था। वो अपनी सबसे बड़ी ताकत पर भरोसा करते थे, यानी खुद पर। अपने आकर्षण से दुश्मनों को शांत करना, अपने तर्कों से मददकारों को मनाना और अपने दुस्साहस से मौकों को पकड़ लेना। अगर एक रास्ता बंद होता तो वो दूसरा खोज लेते थे।
वेनिस की जेल, द लीड से उनका वो भाग निकलना, वो इसी सोच का सबसे बड़ा सबूत है, है ना? और शायद उनके जीवन के सबसे अहम मोड़ों में से एक भी। ऐसे कौन से तीन सबसे खास मोड़ थे उनकी जिंदगी में?
पहला और सबसे मशहूर तो यकीनन यही है, द लीड्स में कैद और फिर वहां से भाग निकलना 1755-1756। जुलाई 1755 में वेनिस के वो जो गुप्त और ताकतवर राज्य जिज्ञासु थे, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया
बिना किसी मुकदमे के।
हाँ, बिना मुकदमा चलाए उस कुख्यात छत वाली जेल, आईपीओबी मतलब सीसे की छते में डाल दिया। वजह कभी साफ नहीं हुई, पर शक था कि वो आजाद ख्यालों के थे, शायद फ्रीमेसन थे या अमीरों को धोखा देते थे।
ये तो उनके लिए एक तरह से अस्तित्व का संकट रहा होगा, उनकी आजादी के फलसफे पे सीधा हमला।
बिल्कुल, ये प्रतीकात्मक और असल दोनों तरह की मौत थी। लेकिन 15 महीने बाद उनका वो कमाल का भाग निकलना, छत में छेद करके एक साथी कैदी के साथ छत पर चढ़कर और फिर भेष बदलकर महल के मेन गेट से बाहर निकल जाना,
अविश्वसनीय लगता है सुनने में।
हाँ, ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और कमाल की बुद्धि का सबूत था। और इस फरारी की कहानी ने तो पूरे यूरोप में उन्हें एक लीजेंड बना दिया। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये उनके फलसफे का सबूत था कि एक पक्के इरादे वाला इंसान अपनी बुद्धि और इच्छा से सबसे जालिम व्यवस्था को भी हरा सकता है। वो एक चालाक एडवेंचरर से एक जीते जागते मिथक बन गए।
ये तो पहला मोड़ था, दूसरा कौन सा था?
दूसरा निर्णायक मोड़ इससे पहले आया था 1746 में, जब सीनेटर ब्रैगेडन ने उन्हें एक तरह से गोद लिया। ये तब की बात है जब वो पादरी बनने का रास्ता छोड़कर संघर्ष कर रहे थे। उनकी मुलाकात अमीर सीनेटर मार्टियो ब्रैगेडन से हुई, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी।
हाँ, वो किस्सा हमने सुना।
कासानोवा ने अपने थोड़े डॉक्टरी ज्ञान और कुछ रहस्यमयी बातों के सहारे उनकी देखभाल की और संयोग से सीनेटर ठीक हो गए।
और इसका नतीजा?
नतीजा ये हुआ कि उनकी दो सबसे बड़ी मुश्किलें हल हो गईं, पैसे की कमी और सामाजिक रुतबे की कमी। कृतज्ञ सीनेटर और उनके दो अमीर दोस्तों ने उन्हें अनौपचारिक तौर पर अपना लिया, जिंदगी भर के लिए आर्थिक मदद दी और ताकतवर लोगों का एक नेटवर्क भी दिया।
तो यहीं से वो संघर्ष करने वाले संगीतकार से एक आराम की जिंदगी जीने वाले जेंटलमैन बन गए।
हाँ, इसी मोड़ ने उन्हें वो साधन और सामाजिक पहुंच दी जिससे वो अपने यूरोपीय कारनामों को शुरू कर सकें, और इसने कहीं न कहीं उनके इस यकीन को भी पक्का किया कि उनकी जो बेहतर बुद्धि है वो उन्हें एक खास जिंदगी का हकदार बनाती है।
और तीसरा निर्णायक मोड़, वो शायद उनके जीवन के बाद के हिस्से में आया।
जी हाँ, तीसरा मोड़ था 1783 में वेनिस से उनका आखिरी बार निकाला जाना। माफ़ी मिलने के कई साल बाद वो वेनिस लौटे थे। 50 की उम्र पार कर चुके थे लेकिन अपनी पुरानी शान और असर दोबारा हासिल नहीं कर पाए। हताशा में या शायद कड़वाहट में उन्होंने एक व्यंग्यात्मक कविता छाप दी जिसमें वेनिस के कुछ बड़े लोगों का मजाक उड़ाया गया था। नतीजा, या तो जेल या देश निकाला। उन्होंने देश निकाला चुना।
ये तो उस शहर से आखिरी विदाई थी जिसने उन्हें बनाया था और जिससे वो शायद प्यार भी करते थे।
बिल्कुल, वेनिस हमेशा वो घर था जहां वो लौटना चाहते थे। ये आखिरी देश निकाला उनके घूमने फिरने वाले सक्रिय जीवन के अंत जैसा था। इसने उन्हें ये मानने पर मजबूर किया कि उनका भटकना अब कोई रोमांचक चुनाव नहीं बल्कि एक कड़वी मजबूरी है।
लेकिन इसी मजबूरी ने उन्हें लिखने पर मजबूर किया।
हाँ, विरोधाभास देखिए, यही व्यक्तिगत त्रासदी और अकेलापन उन्हें बोहेमिया के डक्स महल तक ले गया जहां एकांत में उन्हें अपनी महान आत्मकथा लिखने का मौका मिला। तो ये दुखद घटना उनकी सबसे स्थायी विरासत की नींव बनी।
कासानोवा का जीवन वाकई किसी उपन्यास जैसा लगता है। आज के जमाने में हम उनके इस असाधारण, जटिल और हाँ अक्सर विवादों में रहे जीवन से क्या सीख सकते हैं? क्या इसमें हमारे लिए कोई मानवीय सबक है?
निश्चित रूप से कई सबक हैं। पहला और शायद आज के दौर के लिए सबसे जरूरी सबक है स्व आविष्कार की शक्ति का। कासानोवा पर्सनल ब्रांडिंग के मास्टर थे। उनका जीवन दिखाता है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसे हम लगातार बनाते हैं और सुनाते हैं।
हाँ, ये तो आज के सोशल मीडिया युग में बहुत सच लगता है जहां हम सब अपनी एक ऑनलाइन पहचान बनाते हैं।
बिल्कुल। दूसरा सबक है उनकी कमाल की अनुकूलनशीलता। जेल से लेकर शाही दरबार तक हर माहौल में ढल जाने की उनकी क्षमता अद्भुत थी। उन्होंने भाषाएं सीखी, सामाजिक कायदे समझे, नए हुनर सीखे। ये याद दिलाता है कि बदलते वक्त में सख्ती नहीं बल्कि लचीलापन ही टिके रहने और कामयाब होने की कुंजी है।
तीसरा सबक शायद ज्ञान की ताकत है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी असली ताकत उनकी तलवार या उनके टाइटल में नहीं थी, उनके दिमाग में थी। गणित, साहित्य, इतिहास, इंसानी फितरत, इन सब का ज्ञान ही वो औजार थे जिनसे उन्होंने दुनिया में अपने लिए रास्ते खोले। लगातार ज्ञान हासिल करते रहना ही नए मौके बनाता है।
लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी भी देती है ना, कि स्वतंत्रता की कीमत होती है।
सही कहा। पूरी तरह आज़ाद जिंदगी जीने के लिए उन्हें स्थिरता, गहरे सामुदायिक रिश्ते और शायद मन की शांति की कीमत चुकानी पड़ी। उनके आखिरी साल अकेलेपन में गुजरे। ये हमें बिना जड़ों के जीवन जीने के नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
और इसी से जुड़ा है लचीलापन और फिर से शुरुआत करने की क्षमता का सबक। उनके लिए हार कभी अंत नहीं थी।
बिल्कुल, वो मुश्किलों को रचनात्मक तरीके से हल करने के मौके के तौर पर देखते थे। और हाँ, नेटवर्किंग और मनाने की कला का महत्व भी साफ दिखता है। कैसे सामाजिक रिश्ते बनाए जाएं, ताकतवर लोगों का साथ कैसे पाया जाए और अपनी इमेज चाहे अच्छी हो या बुरी उसे कैसे मैनेज किया जाए।
और अंत में एक शायद थोड़ा उकसाने वाला सबक भी है, जीवन को भरपूर जीने का।
हाँ, ऐसी दुनिया में जो अक्सर स्पेशलाइजेशन और एक जैसा होने पर जोर देती है, कासानोवा की कहानी एक जर्नलिस्ट और लीक से हटकर चलने वाले इंसान का जश्न है। ये हमें शायद ज्यादा जिज्ञासु होने, थोड़े ज्यादा जोखिम उठाने और जिंदगी को उसकी पूरी रंगीनी में अनुभव करने की चुनौती देती है। अनिश्चितता को गले लगाना और जीवन के अप्रत्याशित सफर में खुशी खोजना।
चलिए, इस बहुत ही गहरी और दिलचस्प यात्रा के आखिर में तीन मुख्य बातों को समेटते हैं। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि।
मेरे लिए सबसे ज्यादा छूने वाली और भावनात्मक बात उस कहानीकार का गहरा अकेलापन है जो हमें उनकी आत्मकथा के पीछे महसूस होता है। डुक्स के उस ठंडे महल में अपने शानदार अतीत को याद करते हुए लिखते हुए वो बूढ़े भुला दिए गए कसानोवा की तस्वीर, उनके लिखे जोशीले युवा कारनामों और उनकी उस वक्त की शांत अकेली हकीकत के बीच का जो फर्क है वो बहुत मार्मिक है। ये शायद आज़ादी और सिर्फ खुद पर केंद्रित जीवन की आखिरी कीमत दिखाता है।
दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
बौद्धिक तौर पर सबसे अहम बात यह है कि कासानोवा सिर्फ एक दिलचस्प आदमी नहीं थे, वो ज्ञानोदय के विचार का जीता जागता नमूना थे। उन्होंने तर्क, शक करने की हिम्मत और अपनी किस्मत खुद बनाने जैसे विचारों को सिर्फ महफिलों में डिस्कस नहीं किया, बल्कि यूरोप की सड़कों पर जिया। उनका जीवन दिखाता है कि अनुभव से सीखा गया ज्ञान, यानी करके सीखना, किताबों में पढ़े ज्ञान जितना या शायद उससे भी ज़्यादा कीमती हो सकता है। और हाँ, उनकी आत्मकथा अपने आप में 18वीं सदी की रीति रिवाजों, सियासत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज़ है।
और अंत में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो हम सबके जीवन पर लागू हो सकती है।
सबसे सार्वभौमिक सबक शायद यही है कि सबसे बड़ी कला खुद जीवन जीने की कला है। कासानोवा की कहानी इस बात का जबरदस्त सबूत है कि जीवन खुद कला का एक काम हो सकता है जिसे हम सोच समझकर गढ़ सकते हैं। उनके होने का मतलब किसी एक कामयाबी में नहीं बल्कि उनके अनुभवों के पूरे जोड़ में था, जीत और हार, प्यार और नुकसान, ज्ञान और गलतियां। शायद सबक यह है कि हम अपने जीवन को एक कैनवस की तरह देखें और उसे इस तरह से जिएं कि आखिर में हमारे पास भी सुनाने के लिए एक शानदार, भले ही थोड़ी उलझी हुई कहानी हो।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।